समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात। कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी को फरहत नाज का नमस्कार। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुबह उठने के बाद आप किस तरह दिन की शुरुआत करते हैं, मन में कितनी शांति भरते हैं और कितने भरोसे से और निर्भय होकर बच्चों जैसी उमंग के साथ अपने दिन भर के सफर पर निकलते हैं, ये आपके पूरे दिन का मिजाज तय करता है। और इसीलिए सुबह की शुरुआत जो करनी चाहिए वो करनी चाहिए नई उमंग और उत्साह के साथ। तो आइए इसी उत्साह के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी सरबजीत कौर। नमस्कार सरबजीत।
नमस्कार फरहत। एंड यस इंडीड, यू वेरी राइटली सेड, वेल बिगन इज हाफ डन। एंड लिसनर्स, अ वेरी लविंग वेलकम टू ऑल ऑफ यू ट्यून टू आकाशवाणी FM गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी आर हियर विद आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेयर इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर वी हैव लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट पैक्ड। वी शुल ऑल्सो ब्रिंग यू मेट्रो सिटी अपडेट्स एंड ऑफ कोर्स हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टुडेज डे, दैट इज 29th ऑफ मे। सो फरहत, लेट्स बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस।
जी बिल्कुल सुवर्णजीत।
Prime Minister Narendra Modi will visit Sikkim, West Bengal, Bihar today to launch multiple development projects. In Sikkim, Prime Minister Narendra Modi will participate in the Sikkim at 50, where progress meets purpose and nature nurtures growth event in Gangtok this morning. Mr. Modi will also lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects for the people of Sikkim and address gathering on this occasion. More details from our Gangtok correspondent.
All the roads of Gangtok are leading to the iconic Paljar Stadium today, where Prime Minister Narendra Modi will participate in Sikkim's 50 years of statehood celebration. The Prime Minister, in presence of Governor and Chief Minister of Sikkim, will lay the foundation stone and inaugurate various development projects, including a 750 crore rupees, 500-bedded district hospital at Namchi. Other projects include a passenger ropeway at popular tourist spot Peling in Gazing district and a statue of Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee at Gangtok district. The Sikkim government will organize a beautiful drone show in the evening to make the Prime Minister visit more memorable. Manas Patim Sharma, Akashvani News, Gangtok.
इसके बाद श्री मोदी पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे, जहां वे अलीपुरद्वार और कूचबिहार जिलों में सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। अपने बिहार दौरे में प्रधानमंत्री पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश भी जाएंगे और वहां कानपुर में लगभग 20,900 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी का वहां जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है।
Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the increase in the minimum support price MSP for 14 kharif crops for marketing season 2025-26. Briefing media in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnaw said government has increased the MSP of kharif crops for marketing season 2025-26 to ensure remunerative prices to the growers for their produce.
CACP की रिपोर्ट पर 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए आज कैबिनेट में एमएसपी अप्रूव हुआ है। टोटल अमाउंट इसका 2,07,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट किया गया है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले उसका ध्यान रखा गया है। तो जितने भी क्रॉप्स हैं हरेक क्रॉप के लिए कॉस्ट प्लस 50% इस चीज का ध्यान रखा गया है।
Union Cabinet has also approved continuation of modified interest subvention scheme for financial year 2025-26 with existing 1.5% interest subvention. The Cabinet also gave nod to two multi-tracking projects across Indian Railways in Maharashtra and Madhya Pradesh.
इस साल भारतीय रेलवे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट कार्गो कैरिंग रेलवे बनी है। 1.6 बिलियन टन्स कार्गो कैरी किया पिछले साल और ये एक डिसाइसिव जंप है और इसका एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। बिकॉज व्हेन यू कंपेयर हाईवे एंड रेलवे, CO2 एमिशंस आर प्रैक्टिकली 95% लेस इन रेलवेज और कंट्री की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में भी इसका बेनिफिट मिलता है। बिकॉज कॉस्ट बाय ट्रांसपोर्टेशन, जो रेलवे और हाईवे को कंपेरिजन करो तो रेलवे की कॉस्ट आधे से कम है।
और सरबजीत, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दो दिवसीय सम्मेलन में कवि सम्मेलन, भारत का नारीवादी साहित्य, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय साहित्य की नई दिशाएं जैसे कई सत्र आयोजित किए जाएंगे। उद्घाटन समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और देशभर के साहित्यकार भी मौजूद रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कल नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रीमियम संग्रह, बीमा का दायरा बढ़ाने और दावों के अनुपात सहित की समीक्षा की गई। इन बीमा कंपनियों को चालू वर्ष में 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रीमियम मिला, जो 2019 में महज 80,000 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2024-25 में समग्र साधारण बीमा उद्योग में कुल प्रीमियम संग्रह 3,00,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा।
And listeners, as we celebrate the success of Operation Sindoor, the nation salutes the valor of Indian soldiers. As a tribute to the armed forces, Akashvani News is presenting a special series. Today we remember Paramveer Chakra awardee Major Dhan Singh Thapa, who showed exemplary courage and bravery during the Sino-Indian War in 1962.
Born in 1928 in Himachal Pradesh, Major Dhan Singh Thapa was commissioned into the 8th Gorkha Rifles in August 1949. During the 1962 Indochina War, he commanded a platoon of C Company at the strategically vital Sirijap 1 post near Pangong Lake in Ladakh, tasked with defending the Chushul airfield. On October 21st, the Chinese launched a heavy artillery and mortar assault on the post, damaging some wireless sets and setting the area ablaze. Despite being outnumbered, Major Thapa and his men repelled two successive enemy attacks, inflicting significant casualties on the enemy. Undeterred by mounting losses, they stood firm. A third and more intense assault followed, supported by tanks. With dwindling ammunition and reduced manpower, the platoon continued to resist. When the post was finally overrun, Major Thapa emerged from his trench, engaging in fierce hand-to-hand combat before being captured. For his extraordinary courage, leadership and bravery, Major Dhan Singh Thapa was awarded the Paramveer Chakra. Saklan Akhtar, Kashwani News, Delhi.
और संघ लोक सेवा आयोग ने पंजीकरण और आवेदन पत्र भरने के लिए एक नया ऑनलाइन आवेदन पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल उम्मीदवारों को किसी भी समय आवेदन पत्र के पहले 3 भाग भरने और आयोग की किसी भी परीक्षा में आवेदन करने के लिए तैयार रहने की सुविधा प्रदान करेगा। इससे समय की बचत होगी और अंतिम समय होने वाली असुविधा से बचा जा सकेगा। आयोग ने एक बयान में कहा है कि सभी आवेदकों को upsconline.nic.in वेबसाइट पर नए शुरू किए गए पोर्टल में नए सिरे से आवेदन भरना होगा और अपने दस्तावेज अपलोड करना जरूरी है। पुराना वन टाइम रजिस्ट्रेशन मॉडल अब से लागू नहीं होगा।
And listeners, news now from the international front. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has confirmed that Mohammed Sinwar, Hamas leader in Gaza and brother of late Hamas leader Yahya Sinwar, was killed in an Israeli airstrike earlier this month. Speaking in Parliament, Mr. Netanyahu said Israel was at a dramatic turning point in its war against Hamas and that the military had eliminated Mohammed Sinwar. He added that recent Israeli operations were focused on dismantling Hamas's governing capabilities in Gaza.
और सरबजीत, अब मौसम का रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, तटीय और दक्षिण कर्नाटक, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। झारखंड की अगर बात की जाए तो वहां पर बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भी यही स्थिति बनी रहेगी। लेकिन देश के पूर्वोत्तर भागों में अगले 7 दिन तक गरज और चमक के साथ मध्यम बारिश होगी। विभाग ने कल तक पश्चिमी राजस्थान में लू और धूल भरी आंधी चलने की संभावना व्यक्त की है।
And moving on now to the world of sports, in IPL cricket, the playoffs will begin today. Table topper Punjab Kings will take on second placed Royal Challengers Bengaluru in the first qualifier in Mulanpur this evening. The match will begin at 7:30 p.m. We have more details from our sports desk.
Both the teams are chasing their maiden IPL title. For Punjab Kings, this marks their first playoff appearance since 2014. RCB, on the other hand, haven't finished in the top two since 2016. After the first qualifier, all eyes will be on the eliminator, where fourth-placed Mumbai Indians will face third-placed Gujarat Titans tomorrow. The winning team of the eliminator will face the losing team of the first qualifier and the second qualifier on June 1. The winner of the second qualifier will meet the winning team of the first qualifier in the final on June 3rd in Ahmedabad. Moving on to tennis, where India's Yuki Bhambre and his American partner Robert Galloway secured a hard-fought victory in the French Open men's doubles opening round in Paris. Rohan Bopanna and his Czech partner Adam Pavlasek also progressed to the second round of the tournament after beating American duo of Robert Cash and JJ Tracy 7-6, 5-7, 6-1. And finally in badminton, India's stars are back in action at the Singapore Open Super 750. Indian shuttler Pranoy HS will play against France's Christoph Popov in the round of 16 today. While two-time Olympic medalist PV Sindhu will face a stern test in the next round against Tokyo Olympic gold medalist and current world number 5 Chen Yufei of China this morning. With Neelam Kaushik, this is Ashish Abraham, Akashwani News, Delhi.
और श्रोताओं, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और रुख कर लेते हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से जुड़ी खबरों का.
Yes, Farah, there's some good news from Chennai. In fact, good news for those who are travel bound. The Chennai Metro Rail will be adding 28 new six-car trains by 2028. According to the plan, some underground stations are to be extended and elevated stations such as Guindy and CMBT stations are to receive new platform screen doors to manage peak hour crowding. The introduction of added trains is likely to reduce the waiting time to 3 minutes. The current management, where trains run every 6 to 12 minutes on some sections, will have a wider base of travellers in the metro in the near future. To support six-car operations, infrastructure upgrades are planned at 21 underground stations. Around 180 passengers aboard an Air India Express flight from Singapore had a narrow escape yesterday after pilots were forced to abort landing at Chennai Airport due to an unstable approach and crosswinds. The flight, which was scheduled to land at 10:15 a.m., descended to as low as 200 feet before the pilots initiated a go-around. It eventually landed safely on the second attempt after circling the airport, resulting in a delay of nearly 30 minutes. Moving on now to the news from Bengaluru, Karnataka Chief Minister Siddaramaiah has directed district in charge ministers and secretaries to supervise the relief and rehabilitation efforts at places hit by torrential rainfall. He chaired a meeting in Bengaluru yesterday to take stock of the situation post-monsoon rains in the state. He has also asked the Chief Secretary to convene a meeting of District Deputy Commissioners, CEOs of Zilla Panchayats and District In Charge Secretaries on May 30th and 31st to review the situation. After the augment of southwest monsoon and copious rainfall that followed, 170 taluks in the state were impacted by floods and landslides. In Telangana, Chief Minister A. Revant Reddy, Cabinet Ministers, Party MLAs, MLCs, MPs and senior leaders will take part in the rally to be held at Bachupalli later today. The rally and public meeting are being organised in connection with the Operation Sindoor and following developments to express solidarity with the armed forces. And Farhat, what's the buzz that you're carrying for our listeners today?
Ji, Sarab ji, sabse pehle Rajdhani Delhi se judi khabron ka rukh kar lete hain. Delhi sarkar ke Kala, Sanskriti aur Bhasha Mantri Kapil Mishra ne kal Delhi Sachivalay mein Rajdhani ke vibhinn kala kshetron se judi pratishthit kalakaron ke saath ek baithak ki. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कलाकारों से संवाद स्थापित कर उनके विचारों को सुनना और उन्हें सरकार की योजनाओं में शामिल करना था. इस बैठक में फिल्म, संगीत, थिएटर, मंच कला, भजन और गायन से जुड़े वरिष्ठ कलाकारों ने भाग लिया, जिनमें कुछ को पद्म भूषण जैसे उच्च सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका है. वहीं दिल्ली नगर निगम महापौर राजा इकबाल सिंह ने कल सभी जोन के उपायुक्तों के साथ मानसून की तैयारियों को लेकर एक बैठक की. इस दौरान नालों को सफाई और जलभराव की समस्या के मुद्दे पर चर्चा की गई. बैठक में महापौर ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि नालों की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए. उन्होंने सभी क्षेत्रों में मुख्य जलभराव बिंदुओं की पहचान करने और उसके लिफ्ट महापौर कार्यालय को देने के लिए भी कहा है. और अब आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल ठाणे और नागपुर के बीच चलने वाली एआई आधारित स्मार्ट बसों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यात्रियों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इन बसों में लगाई गई एआई तकनीक सुरक्षा को और बेहतर बनाएगी। बसें सीसीटीवी कैमरे, वाईफाई, एलईडी स्क्रीन, जीपीएस तकनीक और फोम आधारित अग्निशमन प्रणाली से लैस है। खास बात यह है कि इस तकनीक में अलार्म शामिल है जो नशे में विचलित या नींद में ड्राइवरों का पता लगाते हैं और उन्हें सचेत करते हैं, जिससे यात्रियों और ड्राइवरों दोनों की सुरक्षा में सुधार होता है। और अब महानगरों के मौसम का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की, तो आज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें सरब जी, तो कई इलाकों में लगातार भारी बारिश के कारण वहां पर भयंकर बाढ़ आ गई है। अधिकारियों के अनुसार बारिश से जुड़ी घटनाओं में 14 लोगों की जान चली गई है और आज भी वहां पर बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ तूफान की संभावना है। अधिकतम तापमान रहेगा 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। तो ये तो थी बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की।
जी फरत, लेट्स अपडेट आवर लिसनर्स अबाउट द वेदर कंडीशंस इन चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद टू। Chennai is expected to have partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. Minimum temperature 28 degrees Celsius. Maximum may go up to 36 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. Minimum temperature 20 degrees Celsius. Maximum may go up to 29 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperatures will hover between a minimum of 23 degrees, maximum around 33 degrees Celsius. And, listeners, before we move to the most interesting section in today's Aaj Savere, that is wherein we'll be talking about the importance of 29th May, let us first share with you this very important piece of news. 29th May is recognized internationally as the International Day of United Nations Peacekeepers. This day is observed to honor the dedication and sacrifice of UN peacekeepers, both past and present, who work to maintain peace and security around the world. It also serves as a moment to remember those who have lost their lives in the service of peace. The United Nations was founded in 1945 with the primary goal of maintaining international peace and security. India is the fourth largest contributor of uniformed personnel to UN peacekeeping, and currently over 5,000 Indian peacekeepers are deployed in 9 active missions. The UN peacekeepers, also known as the Blue Helmets, get their name from the light blue color of the United Nations flag. In 2023, India received the UN's highest peacekeeping honor, the Dag Hammarskjöld Medal, posthumously awarded to Indian peacekeepers Shishupal Singh and Sanwala Ram Vishnoi. And in fact, Brigadier General Amitabh Jha and Havildar Sanjay Singh will be honored posthumously with the Dag Hammarskjöld Medal at a solemn ceremony today on the occasion of International Day of United Nations Peacekeepers.
और अब आइए श्रोताओं, इतिहास में दर्ज कुछ और घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 1453 की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है खास?
यस फरत, कॉन्स्टेपो एंड ब्रिजेनिया एम्पायर फेल टू द ऑटोमन्स ऑन दिस डे इन द ईयर 1453।
और सन 1727 की अगर बात की जाए तो पीटर टू 11 साल की उम्र में रूस का जो है वो जार बना था।
29th May 1874, present constitution of Switzerland came into effect.
वहीं जर्मनी के मेसरशिफ्ट बीएसएफ 109 लड़ाकू विमान ने 29 मई 1935 को अपनी पहली उड़ान भरी और ये द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन वायुसेना का एक प्रमुख विमान था।
This day in the year 1947 saw the establishment of Indian Standard Institution.
1953 को न्यूजीलैंड के पर्वतरोही एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नॉर्गे ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहली बार चढ़ाई की। इस उपलब्धि की स्मृति में आज ही के दिन माउंट एवरेस्ट दिवस भी मनाया जाता है।
29th May 1992, Agni, India's IRB missile, was successfully test-fired from Orissa coast.
वहीं भारतीय पहलवान और अभिनेता दारा सिंह ने आज ही के दिन 1968 को विश्व चैंपियनशिप अपने नाम की और ये भारतीय कुश्ती के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था.
The Space Shuttle Discovery became the first space shuttle to dock with the International Space Station during the STS-96 mission on May 29th, year 1999. This mission delivered supplies and hardware to the station.
और सन 1999 में नाइजीरिया में नागरिक सत्ता की स्थापना की गई. वहीं सन 2007 में जापान की रियो मोरी मिस यूनिवर्स 2007 बनी. और अब आइए कुछ जानी मानी हस्तियों को हम याद कर लेते हैं. सबसे पहले बात कर रहे हैं हिंदी के जाने माने निबंधकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की. तो इनका जन्म हुआ था 29 मई 1906 को. और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर अनेकों निबंध लिखे. ज्ञानोदय पत्रिका का संपादन भी किया. आपने अपने लेखन के अतिरिक्त अपने नए लेखकों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया. इसके अलावा सामाजिक कार्यों में गहरी दिलचस्पी लेने के कारण कन्हैयालाल को अनेक बार जेल यात्रा भी सहनी पड़ी थी.
Listeners, we are also remembering today Suniti Kumar Chatterjee. Today is his death anniversary. Suniti Kumar Chatterjee was a linguist, educationist and literate. He was a recipient of the second highest Indian civilian honor of Padma Vibhushan. He was a renowned linguist and educationist and best known for his contributions to Indo-Aryan linguists, particularly the Bengali language and literature. He was a specialist in tribal culture of India and the art and culture of Asia.
और अब हम बात कर रहे हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गीतकार और लेखक योगेश गौड़ की. उनके कई गीत ऐसे हैं जिन्होंने गीतकार के रूप में योगेश गौड़ को अमर बनाया. इन गीतों में शामिल है फिल्म आनंद के गीत, काफी लोकप्रिय भी हुए. हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए अलावा यश भारती पुरस्कार भी दिया गया. योगेश ने अपने करियर में संगीतकार घरानों के पिता पुत्र संगीतकारों के साथ काम किया. इस परंपरा में उन्होंने सलिल और संजय चौधरी और सचिन देव और राहुल देव बर्मन के लिए लिखे. फिल्म आनंद के अलावा मंजिल और रजनीगंधा सहित कई फिल्मों में लिखे गीतों ने फिल्मों को पहचान दिलाने में अहम भूमिका अदा की. तो आइए सुनते हैं फिल्म रजनीगंधा से ये प्यारा सा गीत. इसके अलावा आनंद फिल्म से जब दिन दिल ढल जाए ये भी काफी लोकप्रिय रहा.
कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए दीप जलाए. कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए.
Farhad, very beautiful number, and indeed, you know, you've set our feet tapping. So continuing with this, let's remember Isaac Manuel, a Spanish virtuoso, pianist, composer and conductor. He was one of the foremost composers of the post-romantic era who had a significant influence on his contemporaries and younger composers. Isaac is best known for his piano works that incorporate Spanish folk music idioms and elements. We have this beautiful piece for you. Let Listeners, we are also remembering today a personality known as Father of Indian Journalism, Ramanand Chatterjee. Today is his birth anniversary. As a child, Ramanand liked poetry and soon he was drawn to patriotism through the poems of Rangalal Bandyopadhyay. In 1907, Chatterjee launched the English magazine Modern Review and went on to found out two others, the third being the Hindi language Vishwa Bharat magazine. And listeners, today is the birthday of the great versatile actor-artist Pankaj Kapoor. He has worked in Hindi theatre, television and films, recipient of Filmfare Award and 3 National Film Awards. His most acclaimed film roles include that of Inspector PK in Raag, Dr. Dipankar Roy in Ek Doctor, Ek Maut, and the latter based on Shakespeare's King Duncan in Vishal Bhardwaj's adaptation of Macbeth. We have this great dialogue rendered by him.
सूर्योदय तुम्हारी सुविधा अनुसार नहीं होगा दयाशंकर। सूर्य अनुसार जीवन व्यतीत करना प्रत्येक ब्राह्मण का कर्तव्य है और मंत्रोच्चारण दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। ग्राहक तो मिल जाएंगे, प्रभु नहीं।
और श्रोताओं, अब हम याद कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत को जिनकी कड़क कड़क आवाज, रोबदार भाव भंगिमाओं और दमदार अभिनय ने 4 दशकों तक सीने दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले भारतीय सिनेमा जगत के युग पुरुष को याद किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज कपूर की। पृथ्वीराज कपूर 1928 में मुंबई में इंपीरियल फिल्म कंपनी से जुड़े। वर्ष 1930 में बीपी मिश्रा के फिल्म सिनेमा गर्ल में उन्होंने अपना अभिनय किया। इसके कुछ समय पश्चात एंडरसन की थिएटर कंपनी के नाटक शेक्सपियर में भी उन्होंने अभिनय किया और लगभग 2 वर्ष तक फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष करने के बाद पृथ्वीराज को वर्ष 1931 में प्रदर्शित फिल्म आलम आरा सहायक अभिनेता के रूप में काम करने का मौका मिला। वर्ष 1933 में पृथ्वीराज कपूर कोलकाता के मशहूर न्यू थिएटर के साथ जुड़े। वर्ष 1933 में प्रदर्शित फिल्म राजरानी और वर्ष 1934 में देवकी बोस की फिल्म सीता की कामयाबी के बाद बतौर अभिनेता पृथ्वीराज अपनी पहचान बनाने में सफल हो पाए। इसके अलावा 1944 में पृथ्वीराज कपूर ने अपनी खुद की थिएटर कंपनी पृथ्वी थिएटर शुरू की। पृथ्वी थिएटर में इन्होंने आधुनिक और शहरी विचारधारा का इस्तेमाल किया जो उस समय के फारसी और परंपरागत थिएटरों से काफी अलग था। धीरे धीरे दर्शकों का ध्यान थिएटर की ओर से हट गया क्योंकि उन दिनों दर्शकों के ऊपर रुपहले पर्दे का क्रेज ज्यादा हावी था और 16 वर्ष में पृथ्वी थिएटर के जो है 2662 शो हुए जिनमें पृथ्वीराज ने लगभग सभी शो में मुख्य किरदार निभाया। और पृथ्वीराज ने अपने थिएटर के जरिए कई छुपी हुई प्रतिभा को आगे बढ़ने का मौका दिया। इस दौरान पृथ्वीराज कपूर की मुगले आजम, हरिश्चंद्र तारामती, सिकंदर आजम, आसमान महल जैसी कुछ सफल फिल्में भी प्रदर्शित हुई। वर्ष 1960 में प्रदर्शित के आसिफ की मुगले आजम में उनके सामने अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे। इसके बावजूद पृथ्वीराज कपूर अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे। तो आइए सुन लेते हैं फिल्म मुगले आजम से ये गीत। वर्ष 1965 में प्रदर्शित फिल्म आसमान महल में पृथ्वीराज ने अपने सिने करियर की एक और ना भूलने वाली भूमिका निभाई। वर्ष 1968 में प्रदर्शित फिल्म 3 बहुरानियों में पृथ्वीराज ने परिवार के मुखिया की भूमिका निभाई जो अपनी बहुरानियों को सच्चाई की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। पृथ्वीराज को देश के सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहेब फाल्के के अलावा पद्म भूषण और कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है।
And indeed, remembering these great, great veterans, Prithviraj Chauhan and many more names that we took today in our series, the great Isaac Manuel, the great Ramanand Chatterjee and lots more indeed.
जी बिल्कुल, और इसके साथ ही कल जो है वो 30 मई है और हम पत्रकारिता दिवस भी मनाएंगे। और आज हमने बहुत सारे साहित्यकारों की बात कर ली, क्रांतिकारियों की बात करी और पत्रकारिता जगत में जो महान रचयिता थे उनकी बात करी है, तो ये दिन जो है वो हम कभी नहीं भूल सकते। और इसके साथ ही अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे कार्यक्रम को आज किसी कारणवश नहीं सुन पाए हैं तो आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.newsonair.nic.in पर।
Yes, listeners, we hope you enjoyed listening to today's edition of Aaj Savere. Hope it was greatly informative and entertaining. But you stay tuned, for coming up next is our Samachar Prabhat Hindi News Bulletin, followed by Morning News in English at 8:15 a.m. Thank you for tuning in. Have a wonderful and superb day.
Namaskar.